आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड इवनिंग, नमस्कार। यह है दिनभर और मैं हूं नितिन ठाकुर। यूपी में एक तरफ जमकर बारिश हो रही है, हालात खराब हो चुकी है कई इलाकों की, तो दूसरी तरफ सूखे की स्थिति भी है। ग्राउंड से अपडेट लेंगे और मौसम के जानकारों से समझेंगे कि कहीं धूप और कहीं बाढ़ की ये जो स्थिति है वो क्यों है। फिर ताशकंद लिए चलेंगे आपको, जहां आज SCO समिट का आखिरी दिन है। समझेंगे कि क्या हासिल रहा इस समिट का। अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं और देश के नंबर एक पूंजीपति तो वो है ही, तो इस अमीरी के कारणों पर बात करेंगे और ये भी कि अडानी की उपलब्धि का देश की इकोनॉमी से क्या लेना देना है। और आखिर में बात करेंगे ऑक्सफैम की रिपोर्ट की, जिसे हम सबको सुनना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन उसके पहले सुनते हैं 60 सेकंड हेडलाइंस खुशबू कुमार से।
थैंक यू नितिन। भारत अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है, SCO मीटिंग में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह के ठिकानों पर ACB की रेट। RJD सुप्रीमो लालू यादव का इलाज के लिए सिंगापुर जाने का रास्ता साफ, पासपोर्ट हुआ रिलीज। ED के हैदराबाद, बेंगलुरु समेत 40 ठिकानों पर छापे, शराब नीति में भ्रष्टाचार का मामला। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में 19 लोगों की जान बचाई, गैबॉन पोत मोटर टैंकर पार्ट से रेस्क्यू। यूपी विधानसभा के बाद अब विधान परिषद भी होगी पेपरलेस, इंस्टॉल होंगे टैबलेट। दिल्ली में मंकी पॉक्स का मिला एक और केस, नाइजीरिया की महिला हुई संक्रमित, अब देश भर में कुल हो गए मंकी पॉक्स के 13 नए मामले। और अभी भी वेंटिलेटर पर हैं राजू श्रीवास्तव, धीरे धीरे हो रहा है सुधार, भाई का दावा।
यह दिन भर मैं हूं नितिन ठाकुर। देश भर के इलाके इस वक्त बारिश की जद में हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक में बाढ़ की तबाही दिख रही है, अब ये यूपी और राजधानी दिल्ली में भी दिखने लगी है। यूपी के लखनऊ में बारिश की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई, 9 लोगों की इसमें मौत हो गई। उन्नाव, कानपुर के कई इलाके भयंकर बारिश झेल रहे हैं, तो एक तरफ बारिश का ये आलम है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सूखे ने कहर ढाया हुआ है। राजधानी लखनऊ से महज 7 घंटे की दूरी पर है सोनभद्र, यहाँ समस्या बारिश नहीं है, सूखा है। तो यहाँ के किसानों की बात पहले सुन लेते हैं।
सूखा विगत कई वर्षों से सोनभद्र के किसान झेल रहे हैं और इधर लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी और आम जनजीवन में काफी प्रभाव पड़ा है। सरकार किसानों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।
इस समय मौसम के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं यहाँ पे कि बारिश की बूंद दिखना एकदम मुश्किल है, जैसे नील का चांद। किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है।
तो बारिश का ये भेदभाव बड़ा अजीब है, क्योंकि नुकसान बारिश न होने के भी हैं। हमने IMD में मौसम वैज्ञानिक RK जेनामणि से बात की और उनसे समझा कि बारिश का ये भयानक रूप कब तक जारी रहेगा।
देखिए, ये तो अभी जो आज का जो लास्ट जो 1500 का जो रेन हुआ है, मेनली लखनऊ, सीतामढ़ी और बाराबंकी, इस जगह में बहुत ज्यादा बारिश हुआ मूसलधार। जैसे हमारा रिकॉर्ड आया हुआ है लखनऊ में 160 मिलीमीटर हो गया था सुबह 8:30 तक, और पिछले 15 साल में ये हाईएस्ट रेन है सितंबर मंथ का। तो ऐसे ही बाराबंकी में भी 260 मिलीमीटर हुआ है, तो इसकी वजह से पानी बहुत जमा हुआ है। लेकिन ये रेन जो है धीरे धीरे उत्तर पूर्व के दिशा में जाएगा और जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश में और जो केंद्रीय भाग उत्तर प्रदेश में, वहीं अभी 24 आवर्स होगा, उसके बाद कम हो जाएगा। अभी जो कारण है, क्योंकि जो सिस्टम है ना तो लखनऊ के आसपास है, तो इनके आस पास भी जो हमारा मीटरोलॉजिकल पानी पर जो रहता है वेदर का, तो ये मेनली पूर्व उत्तर प्रदेश में वेदर होगा। तो सिस्टम जहाँ होता है उसकी उत्तरी भाग में या पूर्वोत्तर भाग में बारिश ज्यादा होता है। और बाकी अगर देश का बात करें, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम और मध्य प्रदेश में कुछ भाग में है, और वो जो पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत है वो बारिश नहीं है ज्यादा, पहले होता था, अभी कम हो गया।
जेनामणि जी, ये तो इन इलाकों की बात हो गई जो बारिश से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन बहुत सारे इलाके हैं जहां सूखा पड़ा हुआ है, किसान परेशान है, तो बारिश का ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्यों है?
जो डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश अगर हम 13-14 सितंबर तक देखते हैं, तो इनकी जो खड़ा है सारा डिस्ट्रिक्ट में, मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट में जो 79 डिस्ट्रिक्ट है, 75 या 80 डिस्ट्रिक्ट में जो है, उसमें से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कम बारिश हुआ है, 45% या कम बारिश हुआ है। लेकिन ये जो सिस्टम जो पिछले दो दिन में बहुत बारिश होगा इसमें मेकअप होगा और बहुत सारा अच्छा मतलब अभी जो आंकड़ा है वो बदल जाएगा। अच्छा खबर है, बारिश नहीं हो रहा था, अभी दो तीन दिन हो गया बारिश शुरू है। हाँ, सारा उत्तर प्रदेश में जरूर नहीं है, लेकिन अभी मानसून का तो विड्रॉल नहीं हुआ ना, अभी मानसून कंटिन्यू करेगा। अभी और एक सिस्टम बंगाल के खाड़ी में हो रहा है, ये सिस्टम कल जैसे खत्म हो जाएगा, कल नाइट में या 18 तारीख को जो हिमालय का पहाड़ में जैसे खत्म होगा जो हमारा एरिया है बिहार का जो तराई इलाका, तो फिर एक दूसरा सिस्टम 20-21 को आ रहा है उड़ीसा से बंगाल का खाड़ी में, तो वो भी थोड़ा बहुत बारिश देगा 25-26 तारीख को, तो इसलिए थोड़ा बारिश रहेगा, ऐसे नहीं कि पूरा ये सूखा लंबा टाइम रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेनामानी जी। अब बात उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें पिछले कुछ दिनों से टिकी हुई हैं। मौका आपको पता ही है, एससीयू समिट जो उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में हो रहा है। आज इसका दूसरा और आखिरी दिन था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से लेकर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी समेत एक दर्जन से ज्यादा देशों के नेता यहां जुटे हुए हैं और कई दिनों से इस बैठक में होने वाली बातचीत और नेताओं की जो मुलाकात है इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ था। आज इस पर तस्वीर साफ हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से मुलाकात की, ईरान जिसके साथ हमारे हजारों साल पुराने संबंध कहे जाते हैं उनके राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई, हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से बात नहीं हुई है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे खाद्य संकट पर चर्चा की।
भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।
और चलते हैं अब एक्सपर्ट राजन कुमार के पास जो जेएनयू में फॉरेन अफेयर्स के प्रोफेसर हैं। उनसे हमने बात की और पूछा कि इस पूरी बैठक में जो हुआ, मतलब इस समिट में, उसके की टेकअवेज क्या हैं, समरकंद डिक्लेरेशन में क्या क्या हुआ।
कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्पीच था उसमें उन्होंने 3-4 बातों पे जोर दिया। एक तो उसमें इंडिया को वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है, उस पर जोर दिया। उसके बाद उन्होंने इशारा किया कि जो मेंबर कंट्री हैं, सदस्य देश हैं, वो ट्रांजिट उनको देना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चूंकि भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान कई बार ट्रांजिट नहीं देता, कई बार क्या, हमेशा ट्रांजिट नहीं देता भारत को, तो चाहे अफगानिस्तान के लिए जाना हो या फिर सेंट्रल एशिया या ईरान के लिए जाना हो, तो जो बीच के रास्ते जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो उन्होंने उसकी बात की, फिर उन्होंने क्लाइमेट चेंज की भी बात की। तो इन सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की। इसके अलावा जो स्टार्टअप है कि उन्होंने बताया कि कैसे भारत में एक इनोवेटिव हब बनता जा रहा है जिसमें कि 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज इत्यादि हैं। तो इन सारे बातों पे उन्होंने ध्यान दिया। और सबसे अच्छी बात है कि जो चूंकि अब जो प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता, वो भारत के हाथ में आ गया है और वो हैंडओवर भी हो चुका है, तो चीन ने भी उसको सपोर्ट किया है। सप्लाई चेन पे भी बात हुई थी जिसमें कि जो अभी एनर्जी और जो रशिया का सैंक्शन है उसके बाद से जो वहां पे फूड सप्लाई के डिसरप्शन हुए थे और उससे पहले जो कोविड के इशू को लेकर जो डिसरप्शन हुए थे, इन सारी चीजों पर बातचीत हुई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा मौका था जबकि रीजनल पावर ने अपने जो इश्यूज हैं, जो रीजनल इश्यूज हैं उस पर फोकस किया और मुझे लगता है कि भारत के ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के हित में है और भारत को इसमें एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए।
अच्छा राजन जी, पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, रूस क्या भारत से चाहता है और भारत रूस से क्या चाहता है?
हाँ देखिये, कई मुद्दे हैं जिसपे कि मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि कई मुद्दे हैं जिसपे की बातचीत होती रही है। और लेकिन रूस के साथ अभी जो देखिये कई बायलेटरल और मल्टीलैटरल मैकेनिज्म रूस के साथ अलग से हैं, एनुअल समिट रूस के साथ अलग से होता है, वहां पे डिफेंस होता है, डिफेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर 2+2 का मीटिंग होता है, और इसके अलावा जो ब्रिक्स है वहां पे भी तो रूस के साथ हमारे सहयोग बड़े अच्छे हैं, डिफेंस कॉपरेशन से लेके अभी बहुत सारे कॉपरेशन है। लेकिन अभी जो 2-3 मुद्दे हैं जिसपे मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन का ध्यान जाएगा, एक तो यूक्रेन का इशू और उसके माध्यम से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ वो बात हो सकती है। दूसरा कि जो अभी जो हमने काफी मात्रा में अभी रूस से एनर्जी खरीदना शुरू कर दिया है, गैस खरीदना शुरू कर दिया, तो उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए इस पे बात हो सकती है। अगर अमेरिका सैंक्शन करने की कोशिश करती है तो सैंक्शन से कैसे बचा जाए उस पे बात हो सकती है। और जो और एनर्जी कॉपरेशन तो मैंने बता ही दिया, तो मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों पे बात होगी। पुतिन यह सब बताने की कोशिश करें कि जो यूक्रेन में हो रहा है उनका पोजीशन कैसे जस्टिफाइड है, और वो बोलेंगे कि सप्लाई चेन डिसरप्शन में उनका रोल नहीं है, फिर वो वेस्ट की बातें करेंगे, और तो ये सारी बातें मुझे लगता है होंगी। और चूंकि रूस एक्सपेक्ट करता है कि भारत रूस को कंडेम नहीं करे, जो मैक्रो लेवल पे बड़ी बड़ी बातें हैं वो ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है जिस ढंग से इमर्ज कर रहा है उस पर थोड़ी सी बातें हो सकती है, सप्लाई चेन पे हो सकती है, और एनर्जी कॉपरेशन रूपी रूबल ट्रेड, और अगर अगर एम्बिशियस है और इस ढंग का प्लान हो तो ये बात भी हो सकती है कि रूस चूंकि पाकिस्तान को एक गैस पाइपलाइन की बात कर रहा है तो कैसे उस पाइपलाइन से वो बताने की कोशिश करें कि इससे भारत को भी फायदा हो सकता है, फ्यूचर में भारत को भी कनेक्ट किया जा सकता है, ये सारी संभावनाएं बताई जाती है।
एक आखिरी सवाल है मेरा, ईरान से भी बातचीत हुई है लेकिन अमेरिका जो है वो ईरान से नाराज चलता रहा है और हमारे अमेरिका से ठीक ठाक संबंध है, तो ईरान को देखिए SCO में शामिल भी किया जाना है, हम उसके साथ बायलेटरल टॉक्स भी कर रहे हैं, तो भविष्य में क्या हमारे रिश्ते अमेरिका से इस मामले में कुछ खराब होते दिख सकते हैं?
देखिए कुछ मुद्दे होते हैं जो आपके अपने नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, उसमें नाराजगी दूसरे देशों को होगी और उनकी नाराजगी को हम हमेशा उनको खुश नहीं रख सकते। अब अमेरिका नाराज होगा तो ठीक है, ये बात सही है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हो, अमेरिका नहीं चाहता है कि हम SCO के मेंबर बने, अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान के साथ हम कोई भी व्यापार करें, ट्रेड करें, अच्छे संबंध हो, लेकिन हमारे साथ रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध है, हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है। 2018 में हमने ईरान के साथ अपना जो सारा इम्पोर्ट है तेल का वो बंद कर दिया था, जबकि उसके बावजूद भी हमारे चाबहार के प्रोजेक्ट वहां पे चलते रहे। ईरान हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, तो वैसी स्थिति में अगर ईरान भी हमारे हाथ से चला जाता है तो फिर आप कैसे सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर पाएंगे, मुझे बताइए। तो नाराजगी की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये देश नाराज होते रहते हैं। अब अमेरिका सप्लाई कर रहा है जो जो F-16 है पाकिस्तान को, कौन सप्लाई कर रहा है? F-16 का भी रेनोवेशन के लिए जो पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है वो कौन सप्लाई कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, तो उससे तो भारत की नाराजगी होनी चाहिए ना, भारत की नाराजगी भी बढ़ती है उससे। और इतिहास की बात करो तो चीन को किसने बनाया है? तो अमेरिका ने बनाया है एक तरह से, तो भारत के अगेंस्ट में किसने खड़ा किया था? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि नाराजगी चलती रहती है। बस यही है कि भारत का जो स्टैंड है एक न्यूट्रल है, जस्टिफाइड है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का स्टैंड है। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स में मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अमेरिका के दबाव में आके नहीं अपने ट्रेड वो रूस के साथ रोकेगा या ईरान के साथ। मेरा तो यह मानना है कि ईरान के साथ भी, ईरान क्योंकि हमारा सबसे करीबी देश है, उसमें अपने हित को हम इग्नोर करके किसी की नाराजगी को हम नहीं बदल सकते। तो मेरा मानना यह है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे और भारत को हर एक कोशिश करनी चाहिए कि ईरान हमारे साथ रहे, क्योंकि आप यह भी मान के चले कि पाकिस्तान के साथ अगर भारत और ईरान के संबंध अच्छे होते हैं तो इसका सीधा दबाव पाकिस्तान पे पड़ता है, इसका सीधा दबाव ईरान पे पड़ता है, सॉरी इसका सीधा दबाव अफगानिस्तान पे पड़ता है, और अब तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी मेंबर है तो सेंट्रल एशिया भी पड़ता है पे भी पड़ेगा। तो ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए और मुझे लगता है कि दोनों देश इस पे इस अपने सहयोग को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया राजन जी आपका। जिस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रधानमंत्री मोदी भारत की इकोनॉमी पर बात कर रहे थे और बता रहे थे कि भारत में 70,000 स्टार्टअप्स हैं, इनमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं, यानी उनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है, उसी वक्त एक भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स होने के पायदान से ऊपर उठकर अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बिल्कुल सही है, बात हो रही है गौतम अडानी की, जिन्होंने रईसी के मामले में इतिहास रच दिया है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं। अडानी इससे पहले तीसरे नंबर पर थे और दूसरे नंबर पर थे बर्नार्ड अर्नॉल्ट, अब वो पिछड़ चुके हैं। आज दोपहर तक अडानी की दौलत में कुल $5.5 अरब का इजाफा हो चुका था, जिसके बाद वो 155.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए। मुकेश अंबानी इसी लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। अडानी के पास भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह, थर्मल कोयला उत्पादन और कोयला कारोबार के अलावा और भी कई कारोबार हैं, लेकिन वो कौन सी वजह है जो अडानी को देश के बड़े कारोबारियों के मुकाबले इतना ज्यादा कामयाब बनाती है, ये जानने के लिए हमने बात की इकोनॉमिस्ट शरद कोहली से।
देखिए, पहली बात तो हमें समझना होगा कि जो जो संपत्ति होती है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की, उसको आप जब उनको दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कहते हैं तो वो उनकी शेयर होल्डिंग्स के हिसाब से होती है। मतलब मान लीजिए एक कंपनी के 100 रुपए के शेयर मार्केट में है और मेरे पास अगर वो शेयर 70% उसमें से शेयर मेरे पास है, तो वो 70 जितने भी शेयर्स की वैल्यू होगी, कल को अगर मान लीजिए उनकी शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए से बढ़ के 1 करोड़ हो जाती है, तो मेरी अपने आप मेरी वेल्थ जो है वो 70 लाख रुपए हो जाएगी। तो पहले तो ये समझने वाली बात है कि इसमें कंपनीज तो सभी चल रही हैं, पर जिनकी कंपनीज के शेयर्स बढ़ने लगते हैं, और इसमें ये समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में शेयर्स का ऊपर नीचे होना है ये मार्केट फोर्सेस पे होता है। हालांकि उनकी ये बात सही है कि अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन्स, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, ये कुछ उनकी 4-5 मेन कंपनीज हैं जिनके शेयर्स ने पीछे कुछ 2-3 सालों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और बाकी के शेयर्स को बीट करके वो आगे बढ़े हैं। पर या उसको हम ऐसे मान के चले कि उनमें कोई एक विशेष गुण है, क्योंकि ये उनकी कंपनी के शेयर्स पे स्पेकुलेशन ज्यादा होती है, निवेशकों को ये उम्मीद होती है कि आगे जाके ये शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो पैसा लगाते हैं और जब पैसा लगाते हैं तो शेयर प्राइस बढ़ती है, जो डिमांड सप्लाई पे होती है शेयर प्राइस, तो जब प्राइस बढ़ती है तो साथ में अडानी साहब की वेल्थ भी बढ़ती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका, अभी 2 दिन पहले की बात है, वेदांता एक अनिल अग्रवाल साहब का ग्रुप है, वेदांता हम सब जानते हैं स्टील सेक्टर में है, माइनिंग में है, और उन्होंने अभी पीछे न्यूज निकली थी कि वो फॉक्सकॉन के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाले हैं गुजरात में, और अभी कल ही ये खबर आई उनका शेयर एकदम 260 रुपए था, बढ़ के 320 रुपए हो गया। फिर कल ये खबर आई कि साहब नहीं नहीं वेदांता तो इसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं रही, फॉक्सकॉन के साथ कोई और कंपनी उनकी कर रही है, तो एकदम से शेयर नीचे आ गए। देखिए शेयर्स मार्केट अभी $155.8 बिलियन जो गौतम अडानी साहब की जो नेटवर्थ निकल के आई है, इसको नीचे जाने में भी वक्त नहीं लगेगा। अगर ऊपर जाने में वक्त लगाए और कल को शेयर मार्केट क्रैश कर जाती है तो ये एकदम से नीचे आती है। तो इन लोगों की जो नेटवर्थ है, टॉप पे इलॉन मस्क है, उसके बाद जेफ बीजोस थे, अब इन्होंने उसको ओवरटेक किया है, तो ये शेयर प्राइस के बेसिस पे मैं समझता हूँ जो ये अमीरी होती है या जो वेल्दी कहलाते हैं, ये बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है, बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव होती है, और ये रोज के रोज आपको 5-10 बिलियन, 5-7 बिलियन डॉलर ऊपर नीचे आपको दिखाई देगा रोज के रोज। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें इसमें इसको इतना बड़ा मापदंड हमको नहीं मानना चाहिए। ठीक है, आप आंकड़ों के हिसाब से, लिस्ट के हिसाब से आप सेकंड रिचेस्ट हो गए हैं, पर जैसे बाकी कंपनियां फंक्शन करती हैं वैसे करती हैं। कुछ एक मैं आपको हाईलाइट्स बता देता हूं जिसके कारण आपको लगेगा कि गौतम अडानी साहब की जो कंपनीज है उसको थोड़ा सा एज है। वो ये है कि एनर्जी की दुनिया भर में क्राइसिस चल रही है और एयर और पोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। मैं समझता हूँ ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिसमें अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एज लिया है, क्योंकि पोर्ट के प्राइवेटाइजेशन में अडानी ग्रुप की कंपनीज के पास बहुत सारे धीरे धीरे करके पोर्ट्स आ रहे हैं, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो गैस पावर ट्रांसमिशन में जो डिमांड बढ़ी है, इस समय भी आप देखें यूरोप में, बाकी की दुनिया में भी एनर्जी की शॉर्टेज है, एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, तो लाजमी बात है जो कंपनीज उस बिजनेस में इन्वॉल्व है उनका नेटवर्क बढ़ता है, उनकी डिमांड बढ़ती है, उस कंपनीज की तरफ निवेशकों का और ट्रेडर्स का रुझान हो जाता है, इस कारण से इनके शेयर्स बढ़ रहे हैं। तो आपने जो हाल में देखा है एकदम से बढ़ते हुए, मुख्यतः इनके शेयर की प्राइसेस बढ़ी हैं, और मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहूंगा कि अगर ये प्राइसेस नीचे आती है तो उतनी रफ्तार से ये नीचे भी आ जाएगी। बहरहाल हाँ, जब आप लिस्टिंग में अगर दूसरे नंबर पे आए हैं तो बिल्कुल उनको इस बात के लिए प्रशंसा करना पड़ेगा कि 155 बिलियन डॉलर बहुत पैसा होता है, 80 रुपए का आप डॉलर लगाएं तो करीब करीब 13 लाख करोड़ की उनकी इंडिविजुअल वर्थ हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ा है किसी भी व्यक्ति के लिए। पर ये ऊपर नीचे होती रहती है, ये संपत्ति शेयर मार्केट पे आधारित है और शेयर्स की मूवमेंट पर ही आधारित है।
शरद जी, पीएम मोदी ने एससीओ में अपने भाषण में इकोनॉमी के मजबूत होने की बात कही, ये भी कहा कि 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न हैं हमारे यहाँ। क्या गौतम अडानी की इस कामयाबी को भारत की कारोबारी व्यवस्था के मजबूत होने की निशानी के तौर पर देखा जाना चाहिए या ये उससे अलग है?
देखिए, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसमें टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अंबानीज हैं, अडानीज हैं, बजाज हैं, हमें थोड़ा स्टार्टअप कॉन्सेप्ट है। 2016 में स्टार्टअप इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया। स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट, वैसे स्टार्टअप का आप जनरल मीनिंग ले तो कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करे, चाहे एक छोटी सी दुकान क्यों ना खोले, एक ठेला क्यों नहीं लगाए, वो भी एक किस्म का स्टार्टअप है। पर जो असल में आप स्टार्टअप को देखें तो उसमें युवा शक्ति या यूथ का एक प्रतीक माना जाता है कि जो यंग लोग इनोवेटिव थिंकिंग, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, कोई नई चीज शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी पे आधारित या कुछ भी ऐसा शुरू करते हैं जो कि आज से पहले नहीं हुआ होता। तो टेक्निकली हम जाएं तो स्टार्टअप उसको कहा जाता है। अब बिजनेस जो शुरू होता है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये लोग, हम अडानीज की बात करें, अंबानीज की बात करें, तो इनका बिजनेस आज से नहीं, सालों से चल रहा है और जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात करी, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है अमेरिका और चाइना के बाद। ये सच है कि यहाँ यूनिकॉर्न्स बने, अब तो डेकाकॉर्न्स भी बन गए हैं कुछ एक, जो $10 बिलियन से ऊपर की जिनकी वैल्यूएशन है। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये बात ठीक है कि भारत में एंटरप्रेन्योरियल स्किल बहुत है और आज नौकरी ढूंढने वालों से ज्यादा नौकरी देने वाले बन रहे हैं, जॉब गिवर्स बन रहे हैं जॉब सीकर्स की जगह, ये बहुत अच्छी बात है। पर ये भी देखना है कि स्टार्टअप्स का जो सक्सेस रेट है वो 90% से ज्यादा उसमें फेल भी हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए, अब इतना ज्यादा होंगे उसमें से फेल होते हैं, नए आते रहते हैं, कुछ की वैल्यूएशन हो जाती है। पर अगर आप कुल मिला के देखें, मैं एक स्टार्टअप मेंटोर हूँ खुद भी, तो जो प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप्स होते हैं वो बहुत कम है। तो स्टार्टअप्स में हो क्या रहा है कि वैल्यूएशन पे ध्यान दिया जा रहा है, प्रॉफिट पे, बॉटम लाइन्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप्स हैं, बायजूस ले लीजिए, जोमैटो ले लीजिए, इन स्टार्टअप्स को अभी फ्लिपकार्ट ले लीजिए, ये स्टार्टअप्स प्रॉफिट से अभी भी कोसों दूर हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक थोड़ा सा स्टार्टअप इकोसिस्टम में चिंता का विषय है। नौकरी पे लोगों को रखते हैं, उसी रफ्तार से लोगों को निकाल भी देते हैं। अभी पीछे आप देखिए, पिछले 6-8 महीने में इतने लेऑफ्स हुए हैं इन स्टार्टअप्स में से कि जिन लोगों को इन्होंने नौकरी पे रखा था वो सब अब बेरोजगार घूम रहे हैं और इधर उधर नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री जी ने एक जनरल बात करी कि भारत में स्टार्टअप, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो प्रधानमंत्री जी का वहाँ मेंशन करना बनता था और ये फख्र की बात है हमारे सबके लिए। पर स्टार्टअप को, और हम ये गौतम अडानी या अंबानी या टाटा और बिरलास को, मुझे लग रहा है हमें इन दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। पर ये सच है कि भारत GDP के मामले में आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत एक चमकता सितारा है। जब बाकी की दुनिया आज रिसेशन में जा रही है, भारत की आज भी जो ग्रोथ रेट है वो बाकी के बड़ी देशों के मुकाबले सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मुझे लग रहा है भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो चैलेंजेस हैं वो बने रहेंगे, स्टार्टअप हो चाहे वो बड़े इंडस्ट्रीज हो, जो चैलेंजेस दुनिया भर को फेस करने पड़ते हैं वो इनको भी फेस करने पड़ेंगे, शायद भारत में कम फेस करना पड़े क्योंकि हम अपने आप में एक दुनिया है। पर हमें स्टार्टअप को और बड़े इंडस्ट्रीज को, मुझे लग रहा है हमें अलग अलग करके देखना चाहिए, इनको एक साथ हमें इनकी गिनती नहीं करनी चाहिए।
शुक्रिया शरद कोहली जी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। ये गीत हम सब बचपन से सुनते आए, समता और समानता पर बात बहस होती रही, लेकिन यह भी सच है कि भारत में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव आज भी होता है। ये अपने आसपास आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहे होंगे और इस बात की तस्दीक ऑक्सफैम इंडिया नामक एक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में भी की है। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 नाम से पब्लिश हुई इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कैसे लोगों की जाति, धर्म और लिंग से उनकी कमाई तय होती है। ऑक्सफैम के रिसर्चर्स ने 2004 से 2020 तक अलग अलग ग्रुप्स में जॉब, वेजेस, हेल्थ और एग्रीकल्चरल लोन को लेकर अवेलेबल गवर्नमेंट डेटा को देखने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। तो इस रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं, ये हमने पूछा ऑक्सफैम इंडिया के अक्षय टर्फे से।
हमारा जो रिपोर्ट है जो अभी ऑक्सफैम ने किया है, उसमें हम प्रथमता से देश में होने वाले भेदभाव को नापना चाहते हैं, जो काफी कम स्टडीज में पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग खाली असमानता नहीं देख रहे, जो पिछले ऑक्सफैम रिपोर्ट में हम लोग ज्यादा बात करते हैं, पर हम ये देखना चाहते हैं कि जो दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं और जो कोई भी पिछड़े वर्ग है, मुस्लिम्स हैं, ये लोगों के पास समान शिक्षा भी हो, समान रिसोर्सेज भी हो और फिर भी अगर वो जॉब ढूंढने जाएं या फिर क्रेडिट या फिर कर्जा मांगने जाए बैंक में, फिर भी उनके साथ भेदभाव होता है डिस्पाइट वो लोग सेम लेवल पे हो या नहीं। और हमारे रिपोर्ट से ये सामने आया है कि प्रथमता से ये भेदभाव होता है और बहुत ज्यादा रिपोर्ट के आंकड़े जो है सरकारी आंकड़े ही उसमें हमने यूज किए हैं, उसमें देख के आया कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। अगर कोई महिला एक जॉब हो उसमें अप्लाई कर रही है और उनको पुरुषों के जितना ही उनकी शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव है, वर्क एक्सपीरियंस है, फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। और हमने देखा है कि ये जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो कुछ भी जॉब होता है, उसमें सपोज कभी कभी शिक्षा की कमी हो जाती है, मगर ये बहुत कम है। मतलब शिक्षा कम हो ना हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत ज्यादा भेदभाव होने के कारण उनको ये नौकरियां हो या फिर जो कुछ भी आए हो वो मिल नहीं रहे हैं। तो महिलाओं के सिवा हमने वो भी स्टडी किया कि मुस्लिम समुदाय पे कैसे इफेक्ट होता है भेदभाव का, और उसमें भी हमें सिमिलर आंकड़े देखने मिले जिसमें मुस्लिमों को कम तनख्वाह मिल रही है या फिर कम कमाई हो रही है नॉन मुस्लिम्स पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो ये हमारे हाइलाइट्स है और उसमें हमने फिर रिपोर्ट में एंड में बताया कि अगर ये भेदभाव कम करना हो तो सरकार को क्या करने की जरूरत है स्पेशली महिलाओं के मद्देनजर रखते हुए।
अक्षय, इस भेदभाव के पीछे फैक्टर्स क्या हैं? सोशल डेमोग्राफिक जैसे कि रूरल और अर्बन डिवाइड भी एक फैक्टर है क्या? और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा भेदभाव देखने को मिला?
तो हमने सिर्फ जब हम यहाँ पे रिपोर्ट में जो लिखा गया है एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के स्वयं रोजगार के जो सेक्टर्स है इसमें हमने कोई ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर नहीं चूज किया, मगर जो टाइप ऑफ जॉब होती है, मतलब सैलरी का जॉब होता है जिसमें हमें महीने का पगार मिलता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, स्वयं रोजगार जो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो बोलते हैं वो दुकान वाले भी हो सकते हैं या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स जो बोलते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जॉब्स में हमने ये देखा है और सिमिलर मतलब आउटकम्स है। मतलब अगर हम आप देखा जाए जो महिलाओं के साथ अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, अगर किसी महिला का खुद का बिजनेस हो और पुरुष का भी हो, तो उस भी मतलब उनका जो औसतन इनकम है वो 5-6 हजार पुरुषों का ज्यादा आ रहा है महिलाओं से। सिमिलरली अगर SC ST पॉपुलेशन का भी देखे तो पॉपुलेशन से SC ST का जो इनकम है वो बहुत कम आ रहा है। अगर आप देखे जाए कि जनरल पॉपुलेशन अराउंड 20 हजार रुपए महीना कमा रहा हो अपने जॉब से अपनी नौकरी से, तो SC ST को खाली 15 हजार मिल रहा है, 5 हजार है। ये जो अनइक्वालिटी होती है ये इस वजह से नहीं है खाली के उनके पास शिक्षा स्वास्थ्य और बाकी सुविधाओं के लिए नहीं है, बट ऑल्सो कि जब भी उनको मौका मिलता है तब उनके आइडेंटिटी की वजह से उनके साथ भेदभाव होता है।
एक सवाल और है मेरा, इस फर्क को कम करने के लिए सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए, आपको क्या लगता है?
देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी हमें गारंटी देता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको समान मौका मिलेगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के कई सारे कायदों में ऑलरेडी मतलब हमने लिखा हुआ है, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के लिए स्पेशली जब महिलाएं वर्कफोर्स में आती है, जब कार्यबल में जुड़ती है, तो उनको वेतन का वृद्धि मिलना चाहिए। अपस्किलिंग जो हमने मेंशन किया इसका मतलब है कि उनको उनको ज्यादा से ज्यादा अपडेट रहने के लिए इंडस्ट्री के साथ जो नई नई चीजें आती है वो सीखने मिलना चाहिए। नौकरी में आरक्षण भी होना चाहिए और जब मैटरनिटी लीव जो हम बोलते हैं मातृत्व के लिए जो छुट्टी ली जाती है उसके बाद जो महिलाएं कार्यबल में शामिल होती है तो उनको आसान करने के लिए भी प्रोसेस होनी चाहिए। इसके सिवाय हमें एक समान वेतन का कायदा लाना पड़ेगा या फिर जो कायदे है राज्यों में वो हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। बहुत सारे जो क्योंकि हमने जेंडर पे महिला लिंग पे भेदभाव पे ज्यादा फोकस किया है, इसलिए हमारे रिकमेंडेशन में ये भी है कि जो बहुत सारा टाइम महिलाओं का घरेलू कामों में जाता है इसका समान वितरण होना चाहिए। पुरुषों ने भी घरेलू काम में भागीदारी देनी चाहिए, जिसके हिसाब से हमारे महिलाएं वर्कफोर्स में आ सके और एक्चुअली काम कर सके, उनकी जो नौकरी उन्हें मिली है वो ठीक से कर पाए। बाकी जो हमारे मजदूर हैं, अनौपचारिक श्रमिक जो बोलते हैं हम लोग, कामगार हैं, उनके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी सुरक्षा का प्रदान करना चाहिए। इसमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस आता है, लाइफ इंश्योरेंस आता है, बाकी जो चीजें हैं जिसके हिसाब से ये कम हो सकता है। बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के वो भी है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति, आदिवासी और दलित जो है उनको, उनके लिए भी बहुत सारे स्कीम्स है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और उस पर ज्यादा देख रेख होनी चाहिए सिविल सोसाइटी की भी, ताकि ये ठीक से हो पाए।
थैंक यू सो मच अक्षय, और उम्मीद है कि ये जो रिपोर्ट है इसको सुनने के बाद जरूर एक दृष्टि मिली होगी और हमें सोचना भी चाहिए कि हम अपने तई क्या कर सकते हैं कि भेदभाव कम से कम हो और आखिर में एकदम खत्म हो जाए। और खत्म अब दिन भर भी हो रहा है। हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइए radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं नितिन रावत, मैं हूं नितिन ठाकुर। तो अब मुलाकात दिन भर में होगी आपसे सोमवार के दिन, लेकिन बीच में शनिवार और रविवार भी हैं। इन दिनों में भी हमारे पॉडकास्ट आते हैं, उन्हें सुनते रहिएगा। और अंत में बस इतना ही कि अपना बहुत ख्याल रखिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए और आज तक रेडियो सुनते रहिएगा।